5 मार्च रविवार का दिन भर सुनिए संदीप सोनी के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में प्रचार युद्ध स्तर पर, लेकिन मतदाता आज भी खुद को ठगा हुआ महसूस करता है।
बताइए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वही में खाना, वही में नहाना, सब कुछ है, मैं समझ ला कि कलट के आदमी मल रहे हैं।
ये कौन सुनता है? मोदी कहते हैं विकास है, क्या विकास किया है? चुनाव के वक्त सभी लोग आ जाते हैं, इससे पहले कोई किस चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं।
मणिपुर में असम की कहानी दोहराने की कोशिश, लेकिन उन सपनों का क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए हैं?
मणिपुर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसके लिए आपसपा आ जाते हैं, लेकिन आप देखिए अभी मणिपुर में सुधर गया, अभी तो आपसपा का कोई जरूरी नहीं है, अभी पीस है, अभी जहाँ पीस होगा तो आपसपा अपने आप चले जाते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरी दौर के मतदान के पहले सभी पार्टियां ताकत झोंकने में जुटी हैं। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। आखिरी दौर में 8 मार्च को 40 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसमर्थन जुटाने के लिए लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरे। मोदी के रोड शो में जुटी भीड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित दिखे, लेकिन पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचार के इस तरीके पर सवाल उठाया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
ये कैसा डिस्पिरेशन है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास इतने सारे तथाकथित स्टार कैंपेनर्स हैं, आपके पास इतने जलेबी खाने वाले लीडर्स हैं जो चौराहे पे जलेबी खाने के लिए गए हैं, हार्ड वर्किंग काडर है, हार्डली वर्किंग लीडर्स हैं, तो फिर ये सब करने का, ये तामझाम का क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी तो तथाकथित स्टार प्रचारक हैं, लेकिन ये सबसे बड़े स्टार हैं, और सबसे बड़े स्टार को इस तरह गांव गांव गली गली, मैंने बिहार के संदर्भ में भी कहा था, वहां भी इस तरह से उतारना जो है, ये क्या संकेत देता है, किस बात का परिचय है?
ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर है। इसके पहले त्राल में सुरक्षा बलों और संदिग्ध चरमपंथियों के बीच लंबी मुठभेड़ चली, जिसमें एक पुलिसकर्मी और दो चरमपंथियों की मौत हो गई। चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग ने कहा है कि इस साल देश के आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी रहेगी। सालाना संसदीय सत्र की शुरुआत के मौके पर उन्होंने कहा कि विकास दर 6.5% के करीब रहेगी। उन्होंने घरेलू दिक्कतों और दुनिया की आर्थिक रफ्तार धीमी रहने को बड़ी चुनौती बताया। अपने भाषण में उन्होंने स्मॉग की समस्या का भी जिक्र किया और कहा कि वो आसमान को दोबारा नीला रंग मुहैया कराएंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांसवा फियो के समर्थक पेरिस में एफिल टावर के करीब जुट रहे हैं। फ्रांसवा फियो पर अपने परिवार के सदस्यों को ऐसे संसदीय कार्यों के लिए भुगतान करने का आरोप है जो उन्होंने नहीं किए थे। वो इन आरोपों को गलत बताते रहे हैं। सर्वेक्षणों से जाहिर हुआ है कि 10 में से 7 वोटर चाहते हैं कि वो उम्मीदवारी छोड़ दें। रिपब्लिकन पार्टी ने उन पर फैसला लेने के लिए सोमवार को बैठक बुलाई है। उसके पहले फियो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अमेरिका के सिएटल में पुलिस एक पगड़ीधारी सिख को गोली मारने वाले बंदूकधारी की तलाश कर रही है। इस घटना के बारे में सिख समुदाय के स्थानीय नेता जसमीत सिंह ने बीबीसी को बताया।
केंट वाशिंगटन यहाँ पर एक छोटी सी सिटी है, वहाँ पर शाम को 8 बजे के करीब एक सिख जेंटलमैन बाहर अपने कार के ऊपर काम कर रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और उनको गालियां निकालने लगा। उन्होंने समझाने की उसको कोशिश की कि मैं सिख हूँ। सो उसके अंदर ही उस कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा कि आप अपनी कंट्री जाओ, ये छोड़ जाओ, अमेरिका छोड़ के जाओ। सो वो बात जो थी वो एस्केलेट हुई, उन दोनों में थोड़ी हाथापाई हुई और हाथापाई के अंदर ही उस आदमी ने गन निकाल के उनके कंधे में शूट किया। ये हुआ था वहां पर कल रात।
ये थे अमेरिका में सिख समुदाय के स्थानीय नेता जसमीत सिंह। अमेरिका में सिख समुदाय के लिए काम करने वाले संगठन सिख कोलिएशन का ये भी कहना है कि पीड़ित अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के पश्चिमी मूसल में सरकारी सेना और इस्लामिक स्टेट के विद्रोहियों के बीच जोरदार संघर्ष जारी है। मूसल पर अधिकार हासिल करने के लिए सेना ने करीब 2 हफ्ते पहले अभियान शुरू किया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। आज 5 मार्च है, 3 दिन बाद यानी 8 मार्च को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होने वाला है और इससे पहले कि चुनाव प्रचार समाप्त होने की घंटी बजे हर पार्टी के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने लगभग 18-20 मंत्रियों के साथ दिन रात एक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हम साथ साथ हैं कहकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती चुनाव प्रचार का सारा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज लगातार दूसरे दिन बनारस की सड़कों पर उतरे हैं और इस तरह रोड शो कर रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव विधानसभा का नहीं बल्कि उन्हीं का है। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे इस रोड शो का जायजा ले रहे हैं, बनारस में मौजूद हैं। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। विनीत, आप हमें सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल सुन पा रहा हूं।
विनीत, हमारे श्रोताओं को बताएं क्या मंजर है बनारस का, कहीं ऐसा तो नहीं कि होली दिवाली सब आज ही हो जाएगी बनारस में?
संदीप, इस वक्त मैं काशी विद्यापीठ का जो गेट है उसके बस थोड़ी दूर पे हूँ और मेरे सामने कई लोग स्कूटर पर, छोटे बच्चे, उनके हाथों में भाजपा के झंडे हैं, नरेंद्र मोदी का मास्क है, ब्लैक कैट कमांडोज अभी बगल से मेरे निकले हैं। भारी भीड़ है, करीब कई किलोमीटर का रोड शो करते हुए नरेंद्र मोदी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा व्यू ब्लॉक्ड है, लेकिन बहुत नज़दीक है काशी विद्यापीठ का जो गेट है, अंदर हजारों लोग जमा हैं उनके भाषण सुनने के लिए। और आम आदमी अगर देखे तो लगेगा कि बिल्कुल भाजपा, जिस तरह से लोग समर्थक इकट्ठा हुए हैं कि भाजपा पूरा सभी सीटें स्वीप कर लेगी, लेकिन जो आलोचक होंगे संदीप, वो ये कहेंगे कि क्या भाजपा के अलावा में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है, कि हर जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा प्लास्टर की तरह हर जगह पटा हुआ है। संदीप,
विनीत, ये भी बताइए, आप दिन भर से बनारस में हैं, सब देख सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लोगों को हाका जा रहा है जैसा कि अक्सर चुनावी रैलियों में होता है, या लोग खुद ब खुद उमड़ कर आ रहे हैं मोदी के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग अब तंग आ गए हैं चुनावी चकल्लस से?
देखिए, डिपेंड करता है कि आप किससे बात करें। सुबह मैं गया था निषाद समुदाय के कॉलोनी में, वहाँ पर लोग बहुत क्रिटिकल थे कि पिछले कई सालों में कोई काम नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी भी के आने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में सुधार नहीं हुआ है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, और मैं कई घंटों से इस रैली के साथ हूँ, नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। कई ये भी आरोप लग रहे थे कि कई लोग बाहर से आए हैं, उन्हें बाहर से, गुजरात से लाया गया है या फिर बाहर से लाया गया है, लेकिन मैंने लोगों से बात की तो उनका कहना है नहीं, वो यहीं कर हैं, यहीं के हैं, जितने लोगों से एटलीस्ट मैंने बात की, और लोगों में बड़ा जोश व खरोश है। लेकिन एक जो आलोचक उनका वर्ग ये भी है कि भाई जो वायदे, उनसे उम्मीदें थी पिछले 2-2.5 सालों में, वो उम्मीदें बहुत कम ही पूरी हुई हैं।
बहुत शुक्रिया विनीत, बहुत शुक्रिया विनीत, आपकी रिपोर्ट कार्यक्रम में बस कुछ ही देर बाद आने वाली है, ज़मीनी रिपोर्ट, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र शामिल हो रहे हैं। समीर, आप ये बताइए कि राजनीति के हिसाब से बनारस में ऐसे कौन से गड्ढे हैं जिन्हें भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन खुद सड़कों पर उतरे हैं?
जी संदीप, आपने अपने सवाल में ही बहुत सी बातें कह दी, और जाहिर सी बात है कि अचानक प्रधानमंत्री का 3-3 दिन का लगातार प्रोग्राम बनारस में बना, हालांकि ये उनका संसदीय क्षेत्र है, ये बनता है कि यहाँ जाए, लेकिन संसदीय क्षेत्र के नाते जो बनता है, वही उसका दूसरा पहलू भी है कि संसदीय क्षेत्र में तो आपकी इतनी पहचान खुद होनी चाहिए, जो कि उनके आलोचक कह रहे हैं कि यहाँ आपको आने की जरूरत ही ना पड़े, और आपके पास, आपकी वजह से सारी की सारी सीटें आपकी पार्टी के खाते में चली जाए। लेकिन जो विरोधी वर्ग है, आलोचक वर्ग है, उसका ये कहना है कि जो 2-3 चरण के जो चुनाव हुए, उनके बाद जो स्थितियां बनी, और खास तौर पे बनारस में जिस तरह से, या बनारस के आसपास जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, उसको लेकर के लोगों में जो व्यापक तौर पे नाराजगी थी, वो नाराजगी पार्टी की ओर से दूर करने की कोशिश की गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के खुद प्रधानमंत्री तक उसमें शामिल हुए, लेकिन शायद वो नाराजगी, इन लोगों को ऐसा लगा कि वो नाराजगी दूर नहीं हो पाई है, और नाराजगी दूर ना हो पाने की वजह से, चूंकि ये डर था और प्रतिष्ठा का सवाल था ही, क्योंकि एक बात और भी है कि बनारस शहर के भीतर उनके पास जो शहरी इलाके की 3 सीटें हैं, 2012 के चुनाव में 3 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि पूरे पूर्वांचल में ये स्थिति नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न उनके सामने खड़ा था कि अगर ये 3 सीटें हाथ से निकल जाती हैं, जिसकी की पूरी आशंका पार्टी के रणनीतिकारों को दिखाई पड़ रही थी, तो ये बड़ा खराब, बड़ा इससे नकारात्मक संदेश जाएगा। ये बहुत बड़ी वजह है जिससे कि उन्होंने आखिरी समय पर बाजी पलटने के लिए इस तरह का पूरा एक कार्यक्रम का संयोजन किया।
ये थे लखनऊ से हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र, जो बता रहे थे कि बनारस की राजनीति में वो कौन से गड्ढे हैं जिन्हें भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा है। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ देर पहले जिक्र किया था, बीबीसी संवाददाता विनीत खरे वाराणसी में हैं। उन्होंने गंगा की लहरों पर सवार होकर घाटों का नज़ारा बयां करने के बजाय शहर की गलियों में भटकना बेहतर समझा और वो जा पहुंचे निषाद समुदाय के बीच, जो गंगा में सबकी नैया पार लगाते हैं लेकिन उन्हें खुद अपनी नैया जो है वो चुनावी वादों के बोझ में डूबती सी नज़र आ रही है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
हम इस वक्त हैं एक मोहल्ले में जहां निषाद समुदाय के लोग रहते हैं ज़्यादातर, बड़ी संख्या में। शिवपुरवा इसे कहते हैं इस इलाके को, शिवपुरवा निराला नगर। हमारे साथ यहां की स्थानीय महिलाएं हैं, ज़्यादातर निषाद समुदाय के लोग रहते हैं यहां पे।
200-250 साल से हो ना कि हर महीने में जेठ बैसाख कौन महीना मैसन हो कि यहाँ पानी नहीं रहता है, हर समय पानी है। बताइए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर पुरनिया डोलने को लिए कोशिश करता है वो भी गिर जाते हैं, तो दौड़ के आदमी उठाते हैं। यहाँ कौन मुसीबत का बहाल हम लोग बताए कि वही में खाना वही में नहाना सब कुछ है, मैं समझ ला कि कलट के आदमी मर रहे हैं।
ये वही निषाद समुदाय की हम बात कर रहे हैं जो बनारस के घाटों में जो नाव चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और इस हालत में उन्हें यहाँ पर रहना पड़ता है। पार्टियां आई, चाहे वो अखिलेश यादव हो जो कह रहे हैं कि काम बोलता है, यहाँ पर उनका काम शायद नहीं बोल रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी हों जो कि अच्छे दिनों का वायदा लेकर वो चुनाव प्रचार करते हैं, यहाँ पर लोगों के अच्छे दिन अभी तक फिलहाल नहीं आए हैं।
तेज का है? पानी ने संध्या सवेरे इतना तेज पानी में ऐसे कैसे जाल जाए रोड, अब हम लोग कितनी परेशानी, इतनी महक होता कि खाना नहीं खा जाता।
और यहाँ पर बीमारी का भी डर रहता होगा,
बीमार है बच्चे हमारे, बुजुर्ग आदमी देखो बीमार होके, हमारी जेठानी बीमार है, हमारी देखो हमारा आदमी तो एकदम बीमार है पानी से, बच्चे तो बीमार है, जवान भी आदमी गिर जाते हैं बीमारी से, हर महीने कौनो महीना ऐसा नहीं हो कि यहाँ सूखल रहा
है। मतलब आप लोगों ने शिकायत की है लेकिन कोई फर्क,
चुनाव के समय आएंगे हमसे वोट ले लेंगे, फिर इसके बाद कहते हैं कि हम वोट नहीं दिए हैं, आप लोगों ने वोट नहीं दिया है, आपने ये नहीं किया है, आपने वो नहीं किया है, सारी बातें, चाहे सपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हम लोगों ने मेयर से लेकर के सांसद तक दिया, सांसद की तो बात दूर की बात है, हमने प्रधानमंत्री इस देश को दिया और हमारी स्थिति ये है कि नरक जैसी स्थिति है, बिल्कुल सीवर का पानी पीने के लिए विवश है, हमारे बच्चे बीमार हैं।
ये दयनीय स्थिति कई सालों से जैसा कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं और इसी कारण उन्होंने वर्ष 2013 में एक निषाद पार्टी बनी। कहा जाता है कि निषाद जो है बड़ी संख्या में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और वोटरों पर उनका जिस तरह से वोट कास्ट होंगे उस पर असर हो सकता है। 8 तारीख को यहाँ पर वोट करने हैं और आपके जो निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी का बनने का क्या कारण है?
निषाद पार्टी बनने का कारण यही है कि हम लोग की बात कोई सुनी नहीं जाती है, सारे निर्बलों की बात नहीं सुनी जाती है। निषाद पार्टी केवल हमारी पार्टी नहीं है, जितने भी निर्बल हैं, निर्बल जो भी है और किसी समाज से निर्बल नहीं आते हैं, जो बलहीन है उनको, उनके लिए ये पार्टी बनाई गई है, जो गरीबों के लिए ये पार्टी बनाई गई है। हम लोगों ने चंदा इकट्ठा कर करके विनोद भाई को खड़ा किया गया है।
जी, ये विनोद निषाद है, विनोद निषाद। ये जो निषाद पार्टी बनी 2013 में बनी है और निषाद वर्ग जहाँ तक मेरी समझ है भाजपा को ये समाज वोट करता रहा था, इस पार्टी को बनाने का क्या कारण था?
जब यहाँ 2014 में मोदी जी आए थे और नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे, तो वो कुछ वादा निभा नहीं पाए और 3 साल हो गया उनका सरकार होने के बाद, और जब से देश आजाद हुआ तब से हम लोगों को देश में गुलाम बना के रखा गया, गरीबी रेखा की, इसको मलिन बस्ती घोषित किया गया,
मलिन बस्ती।
हाँ, लेकिन मलिन बस्ती घोषित करने के बाद कोई भी मलिन बस्ती का व्यवस्था कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पे निरंतर कम से कम 25 सालों से नाला बह रहा है, या ना तो कोई सीवर है ना तो कोई पानी है, लोग अपने घरों में लोग घर से निकलते हैं रोजी रोजगार पर, तो नाला में पहले पैर रखकर शुरुआत एकदम बुरे दिन से होता है, तो क्या मोदी जी अच्छे दिन हम लोगों को दे रहे
हैं? कुछ भी नहीं क्या है, कुछ भी नहीं,
कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं,
मलिन बस्ती घोषित करके
पतली सड़कें, पानी भरा हुआ,
पतली है ही है, उसको चौड़ा कहाँ से हो पाएगा, लेकिन जो है वो हालत तो सुधार दिया जाए। ये कौन सुनता है, न मोदी, मोदी कहते हैं विकास है, क्या विकास किए हैं? चुनाव के वक्त सभी लोग आ जाते हैं, इससे पहले कोई चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं।
बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट सुन रहे थे आप। और आइए अब बात भारत के उस हिस्से की जहां रहने वालों को हमेशा यही महसूस हुआ कि भारत उनसे काफ़ी दूर है। पूर्वोत्तर की सात बहनों में से एक राज्य मणिपुर के चुनावी रंग में इस बार भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा बड़ी संख्या में दिख रहा है। यहाँ के मतदाता भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कितनी बदल रही है ये साफ होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। विधानसभा की कुल 60 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 4 मार्च को हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 8 मार्च को होने वाला है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के भावनंद सिंह से बात की, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
पूरी भारत की तरह अभी वेब जो बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत की जो अभी उसने वो जो दिया है उसके मुताबिक मणिपुर में भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा अभी।
लेकिन आपको लगता नहीं कि असम में मॉडल को आप रिप्लिकेट करने की बात कर रहे हैं मणिपुर में? तो मिली जो सरकार में आपने कुछ वादे किए थे, आपको पता ही है, उसमें एक वादा ये भी था कि जो बाहर के जो सो कॉल्ड हिंदू हैं उनको आप नागरिकता देंगे, लेकिन वो जो है एक मुद्दा बन रहा है जिसमें वहाँ के आपके पार्टनर्स जो हैं वो भी उसके बहुत ही पक्ष में नहीं हैं। तो ऐसी दिक्कत कहीं इस वजह से तो नहीं आ रही कि कहीं भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ बेल्ट की तरह बाकी नॉर्थ ईस्ट को भी समझ लेती?
नहीं, लेकिन असम की बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मणिपुर में हम लोग ने ये सब हम लोग का मुद्दा में नहीं है। हम लोग को तो सिर्फ डेवलपमेंट ही है, करप्शन और डेवलपमेंट के मुद्दा में हम लोग लड़े हैं इलेक्शन।
यहाँ जो है वो सुरक्षा बलों को जो विशेष अधिकार मिला हुआ है उसका एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, मतलब ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस पर बीजेपी की अपना रुख क्या है, जो स्पेशल पावर एक्ट जो मिलता है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलता है, जिसके खिलाफ आप यहाँ आपसपा के बारे में कह रहे हैं?
देखिए, आपसपा ऐसे एक चीज़ है जो सिचुएशन डिमांड करती है। मणिपुर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसके लिए आपसपा आ जाते हैं, लेकिन आप देखिए अभी मणिपुर में अभी सुधर गया, अभी तो आपसपा का कोई ज़रूरी नहीं है अभी, यू नो, अभी अभी आप सुनेंगे नहीं अभी एक्स्ट्रा जुडिशियल, ये सब पहले एक ज़माने में थे, अभी सुनाई नहीं दे रहा अभी, क्योंकि अभी अभी पीस है, अभी जहाँ पीस होगा तो आप अपने आप चले जाते हैं।
तो इसका मतलब आप कहेंगे ये रिकमेंड करेंगे कि हटा देना चाहिए, केंद्र में भी आपकी सरकार है?
ये सब मैं अभी बोल नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये अब सेंट्रल लोग ही करेंगे, लेकिन आसपा अपने आप चले जाते हैं, जब पीस जब जहाँ होगा आसपा अप्लाई नहीं करते हैं।
ये बताइए कि जो बेसिकली मुख्यतः 15 साल से इबोबी सिंह की सरकार रही है यहाँ पर, उनके खिलाफ मतलब क्या चार्जेस है आपका, और उनके खिलाफ आपका कौन सा उम्मीदवार है जो कि 15 साल जो चीफ मिनिस्टर है रह चुका उसको टक्कर दे? आप हैं, आपका मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? यहाँ
चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अभी तक इलेक्शन के बाद ही डिक्लेयर करेंगे।
ऐसी स्थिति मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी का बड़ा इम्फेसिस रहा है, और आप लोग कांग्रेस को अक्सर इस मामले पर घेरते रहे हैं कि अपना मुख्यमंत्री का या इवन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं, मोदी साहब खुद ही कहते रहे, तो यहाँ फिर उसको लेके थोड़ा हिचक क्यों?
ये मणिपुर में ही नहीं है, यूपी में भी हम लोग नहीं दिया, शायद और 2-3 जगह में भी नहीं दिया, तो स्टेट स्टेट के वजह आई मीन सिचुएशन डिपेंड करते हैं।
यूपी में तो इसलिए भी नहीं है कि शायद बहुत सारे दावेदार हैं मुख्यमंत्री बनने के,
यहाँ सिचुएशन वही हो भी सकता है।
आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो केंद्र में सरकार है, उसकी जो बहुत अपनी जो उपलब्धियों में जो प्रधानमंत्री गिनवाते रहे उसमें एक बड़ी उपलब्धि नागा एकॉर्ड की बात करते रहे, लेकिन उस पर इल्ज़ाम ये रहे कि नागा एकॉर्ड है क्या, ये अभी तक जाहिर नहीं हो चुका। चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमको नहीं पता, और वाकई जनता को भी नहीं पता ये सवाल।
नागा एकॉर्ड का ऐसा है, पीपल आर जनरली वो नागा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में मणिपुरी लोग वरीद है, और प्राइम मिनिस्टर खुद बोल के गए हैं कि मणिपुर के इंटीग्रिटी में हम लोग कुछ समझौता करने नहीं वाला है, और उसके ऊपर हम लोग को होम मिनिस्टर भी आए और हम लोग का खुद अमित शाह जी आए, सब ने बोल के गया कि इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को आप विश्वास नहीं कर सकते तो किसको विश्वास करेंगे आप?
नहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ एकॉर्ड हो रहा है वो उनका तो एक डिमांड ये है कि आपके मणिपुर का एक बहुत हिस्सा और बाकी कई स्टेट्स के हिस्सा हैं जो कि वो कहते हैं कि वो मिलना चाहिए उनको।
वो लोग डिमांड करने वाला है और देने वाला सेंटर है। सेंटर अगर बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे तो इसमें क्यों इतना वो बना रहे।
कोई भी जब सुलह या समझौता होती तो उसमें तो दोनों पक्ष के कहीं ना कहीं एक रास्ता निकलता है ना।
कोई भी समझौता करे लेकिन मणिपुर की इंटीग्रिटी तो प्राइम मिनिस्टर खुद बोल के गए हैं कि इसमें कोई समझौता नहीं होगा।
तो आप एकदम मतलब दावे के साथ कर सकते हैं कि मणिपुर का कोई हिस्सा इस एकॉर्ड में कहीं नहीं जाने वाला है, किसी को नहीं दिया जाने वाला है।
डेफिनेटली डेफिनेटली जरूर जरूर।
ये जो बंद जो चल रहा है, ये सारा ब्लॉकेट जो आप जो हाईवे का बेसिकली जो चल रहा है तो उसमें भी इल्ज़ाम है चूँकि ये एकॉर्ड है और आप उसको ये नहीं कर रहे हो उन्हीं लोगों से हैं और वही लोग करवा रहे हैं ये सारे ब्लॉकेट को, तो आप जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खामोश हैं।
ये तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना, हम लोग उल्टा बोल रहे हैं उनको। आप UNC वाले जो है उनके साथ कांग्रेस समझौता करके ये सब मैच फिक्सिंग कर रहा है, दोनों फायदा उठा रहे हैं।
ये बताइए कि अगर मैं पूछूं कि 60 में से कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं या कितने का दावा है आपका?
कल तक तो मैं सोचा कि 30+2 ऐसे मिलेंगे, आज मैं फर्स्ट फेज के बाद देखने 40 हम लोग तो जरूर जीतेंगे।
मणिपुर में 60 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे BJP अध्यक्ष राज्य के जो हैं भावनंद सिंह, उनसे बात कर रहे थे BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। एक खबर अंतर्राष्ट्रीय लेंगे अब हम। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आप जानते हैं चीन है। चीन ने अपनी विकास दर का अनुमानित लक्ष्य घटा दिया है। क्या मतलब है इसका? इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले बीजिंग फ़ोन किया, वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से जानना चाहा मतलब क्या है इसका।
चीन ने गत 25 साल में जो विकास का दर था उससे भी कम 6.5 पे ग्रोथ रेट रखा है 2017 के लिए, और गए साल में उन्होंने कहा था 6.5 से 7 के बीच में रहेगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ली केचांग ने ये कहा कि 6.7 हमने अचीव किया है, उसके बावजूद उन्होंने 6.5 रखा है। उसका माने यह है कि वो मानते हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां में सुधार के बजाय थोड़ी सी बैकवर्ड जाएगी, थोड़ा सा पीछे जाएगा। उसका कारण यह है कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एक स्लगिशनेस हो रहा है और वर्ल्ड वाइड स्लगिशनेस से चाइनीज एक्सपोर्ट्स को, चाइना का जो भी निकास है उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा यह है कि चाइना के अंदर बड़ा स्लो डाउन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी तरह से कम हो गया है, तो चीन के लगता है कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ रखने से उनको आगे परिस्थिति ऐसी होगी कि शायद 6.5 भी अचीव करने में तकलीफ होगी।
सैबल, ये भी बताइए कि इसका चीन की अर्थव्यवस्था के अलावा विश्व की अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो क्या असर पड़ सकता है इसका?
एक तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा डंडा दिखा रहे हैं जब से आए हैं। पहले उन्होंने कहा कि करेंसी मैनिपुलेटर का दर्जा देंगे हम चीन को, फिर सारी दुनिया ने समझाया, उनके अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि कैसे ये दर्जा दे सकते हैं कि चाइना तो अभी एक जमाने में करेंसी मैनिपुलेटर था। उसके बाद लास्ट वीक उन्होंने कहा नहीं नहीं उसके बावजूद भी हम उनको करेंसी मैनिपुलेटर ही बताएंगे। तो चाइना में ये डर तो है कि अगर मैनिपुलेटर बताया जाए तो यहाँ की रेमिनबी और यहाँ की जो करेंसी है उसको बहुत बुरी तरह से धक्का लगेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मार खाएगी। दूसरा, ट्रंप ने ये कहा कि चाइनीज एक्सपोर्ट, चाइना का माल जो अमेरिका में आता है उसमें हम 45% टैक्स बिठाते हैं। अब ये करेंगे नहीं करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो एक फियर साइकोसिस उन्होंने क्रिएट किया है उसका असर चाइनीज इकोनॉमी पर पड़ रहा है। बाकी लोग जो इन्वेस्ट करने यहाँ आते हैं उनको चिंता हो रही है कि भाई यहाँ पैसा लगाएंगे उसके बाद जो अटक हो जाएगा हमारा पैसा अटक जाएगा। इसलिए जनवरी महीने में 9% गिरावट हुई फॉरेन इन्वेस्टमेंट में।
बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता। उधर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर हाल के दिनों में हमले की जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं ने वहां रहने वाले भारतीयों को चिंता करने पर, सोचने पर मजबूर कर दिया है। न्यूयॉर्क में हमारे सहयोगी सलीम रिजवी ने कुछ ऐसे ही भारतीयों से बात करने के बाद ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है।
कैंसस में 22 फरवरी को हुए हमले में एक श्वेत अमरीकी हमलावर ने बंदूक से हमला करते हुए कथित तौर पर यह भी कहा था कि मेरे देश से बाहर निकल जाओ। उन हमलों के बाद से भारतीय मूल के आम लोगों में यह भय बढ़ गया है कि अब उनको भी नस्ल और रंग के आधार पर हिंसा का निशाना बनाया जा सकता है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से कोई 3 दशक पहले आए राजेश्वर रेड्डी अब न्यूजर्सी में रहते हैं और एक तेलुगु संस्था नॉर्थ अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।
डर तो है, पर डरने की बात नहीं है। अभी देखो, एग्जीक्यूट ऑर्डर दिए तो अभी क्या हुआ, एक जज भी रुक दिया, अमेरिकन लॉ आर स्ट्रिक्ट, अब डरने का उत्तर नहीं।
तो आप क्या कह रहे हैं कम्युनिटी को, क्या समझा रहे हैं लोगों को, क्या करें?
कम्युनिटी डरने का बात नहीं, संभाल करो एनवायरमेंट। देखो एक बार ये थोड़ा गर्म है, जस्ट इग्नोर एंड मूव, एक दो तीन महीने में सब कूल हो जाएगा। और एक बात क्या है, नेक्स्ट जनरेशन लोग, अपने बच्चे लोग इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, मिंगल विद अदर कम्युनिटी।
लेकिन राजेश्वर रेड्डी कहते हैं कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद हालात खराब हुए हैं। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देते हैं कि उन्हें अपने बयानों में थोड़ा नरमी लानी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वो सभी अमरीकियों के राष्ट्रपति हैं। अमरीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या 20 लाख से अधिक बताई जाती है। बहुत से भारतीय मूल के लोग तकनीकी, फाइनेंस, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल या पेशेवर डिग्रियों के साथ कई वर्षों से ऊंचे पदों पर भी मौजूद हैं। इसके अलावा व्यापार या बिजनेस में भी बहुत से भारतीय मूल के लोगों ने वर्षों से अपनी पैठ बनाई है। लेकिन 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव मुहिम के समय से ही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कथित नस्ली भेदभाव को प्रेरित करने वाले कुछ बयानों के कारण अमेरिका में नस्ली भेदभाव पर आधारित हिंसा या हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर कुछ श्वेत अमरीकी लोगों द्वारा गैर श्वेत लोगों पर नस्ली छींटाकशी या हिंसक हमले करने के मामले बढ़े हैं। न्यूयॉर्क के जैक्सन हाइट्स इलाके में दक्षिण एशियाई मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। भारतीय मूल की अमरीकी महिला सोनिया जैक्सन हाइट्स इलाके में ही एक गारमेंट स्टोर चलाती हैं। वो कहती हैं कि भारतीय मूल के लोग दहशत और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं।
सब लोगों में दहशत फैली हुई है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, तो किसी को भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ऐसा होना नहीं चाहिए, हम अमेरिका में रहते हैं, सब अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स होते हुए भी हमारे दिलों में इतनी दहशत वो पैदा हो गई है कि क्या होगा, यही सब लोग सोच रहे हैं कि कल को क्या होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है इधर हमारे इस एरिया में।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को अमरीकी संसद में अपने पहले भाषण की शुरुआत में ही नस्ली भेदभाव और उससे प्रेरित हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कैंसस में भारतीय मूल के लोगों पर किए गए हमले का भी जिक्र किया। अमरीका में नस्ली भेदभाव और हिंसक हमलों पर नजर रखने वाली एक अमरीकी संस्था सदन पॉवर्टी लॉ सेंटर के मुताबिक अमरीका में ट्रंप के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत दर्ज के बाद से अमेरिका में नस्ल और धर्म के आधार पर भेदभाव से प्रेरित हमलों में बढ़ोतरी हुई है। कई भारतीय मूल के लोग अब ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें अब बढ़ चढ़कर अमरीकी समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ेगा और हिंसा के खतरे के मौजूदा दौर से निपटने के लिए होशियार रहना होगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
आदेश कुमार गुप्त मेरे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं। बताएं खेल की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है।
जी देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बैंगलोर में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज मैच के दूसरे दिन जब खेल समाप्त हुआ तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट खोकर 237 रन था। कल भारत की पहली पारी 189 रन के स्कोर पर समाप्त हुई थी। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को अभी 48 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है। आज जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब मैथ्यू वेड 25 और मिचेल स्टार्क 14 रन बनाकर खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैट ट्रेंशॉ ने 60 और शॉन मार्श ने 66 रनों की शानदार पारी खेली। भारत के रविंद्र जडेजा ने 49 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उधर सुरक्षा के भारी बंदोबस्त के बीच आज पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पेशावर जल्मी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच थोड़ी ही देर में खेला जाएगा। साल 2009 में 3 मार्च को श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, उसके बाद दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। पाकिस्तान सुपर लीग में देसी विदेशी खिलाड़ी सहित 5 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल से पहले के तमाम मुकाबले दुबई में खेले गए, तो देखना है कि किस तरह से ये फाइनल मुकाबला होता है।
बहुत शुक्रिया। और वक्त हो चला है एक बार फिर मुख्य समाचार सुनने का, वत्सल राय से।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 8 मार्च को होने वाले आखिरी दौर के मतदान के पहले सभी पार्टियां ताकत झोंकने में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसमर्थन जुटाने के लिए लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कथित बलात्कार के मामले में घिरे गायत्री प्रजापति के मंत्रिमंडल में बने रहने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा है। भारत प्रशासित कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और संदिग्ध चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और 2 चरमपंथियों की मौत हो गई। चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग ने कहा है कि इस साल चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी रहेगी और ये 6.5% के करीब रहेगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।